वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज उत्सव है श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी तीसरे स्कंद में जो वैकुंठ का वर्णन करते हैं तो वहाँ वो कहते हैं अखंडित उत्सव। वैकुंठ का दूसरा नाम क्या है? अखंडित उत्सव। जहाँ कभी उत्सव शेष नहीं होते या खंडित नहीं होते उस स्थान को क्या कहा गया है? वैकुंठ कहा गया है। तो ये जो गौड़िया संप्रदाय है इसमें भी नित्य उत्सव चलते रहते हैं। कोई शरीर छोड़े तो भी उत्सव, किसी का प्राकट्य हो जाए तो भी उत्सव, और बीच का जो जीवन है उसमें सदा उत्सव ही उत्सव है। तो ये उत्सव इसलिए है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक अभ्यास में सदैव उत्साह बना रहे या हम उत्साहित रहे, इसलिए उत्सव है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने कई सारे उत्सव दिए हैं, और विशेष रूप से ये जो देन है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अत्यधिक स्कॉलर थे नवद्वीप में, तो इन्होंने उनको कहा था कि हे भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद, तुम क्या करो, वैष्णव पंजिका बनाओ। वो स्कॉलर थे एस्ट्रोलॉजी वगैरह के, कहा कि वैष्णव पंजिका बनाओ और उसमें जितने हमारे वैष्णव आचार्य गण हैं उनका आविर्भाव और तिरोभाव लिखो। तो तब से ये सारे उत्सव नियमित रूप से शुरू हो गए, या जो इस परंपरा में जो वैष्णव गण हैं वो उसको मनाने लगे। तो आज वसंत पंचमी भी है, वसंत रास ब्रज में होता है भगवान आज के दिन, जैसे शरद पूर्णिमा में भगवान रास क्रीड़ाएं करते हैं, तो उसी प्रकार से आज वसंत रास है। आप मायापुर में होंगे तो आज देखेंगे अष्ट सखी और राधा माधव पूर्ण रूप से पीले वस्त्रों से सज्जित होते हैं और उनको हल्दी वगैरह फेस सब जगह लगाते हैं। और आज के दिन विशेष रूप से राधा कृष्णा हम भक्तों से फ्लावर्स स्वीकार करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो वसंत रास का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है, तो हमारे पास समय कम है, हम प्रयास करेंगे सारे आचार्यों के चरणों का स्पर्श करेंगे। कैसे स्पर्श करेंगे? उनका गुणगान करके। जब हम किसी का गुणगान करते हैं वास्तव में उनके चरणों का हम स्पर्श करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तो तीसरे नंबर में लिखा है विष्णुप्रिया देवी का आविर्भाव है। तो विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे निमाय पंडित के रूप में, तो उनकी जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था लक्ष्मीप्रिया, और निमाय पंडित के रूप में इनको बहुत अधिक घमंड था। तो ऐसे निमाय पंडित विद्या प्रदान करने के लिए बांग्लादेश जाते हैं, पूर्व बंगाल उस समय कहा जाता था, अभी तो बांग्लादेश बना। तो पूर्व बंगाल जाते हैं अपने शिष्यों के सहित, उनके जो स्टूडेंट थे, और उस समय उनकी जो पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया उनके विरह के कारण अपने शरीर को त्याग देती हैं, और चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित पूर्व बंगाल की यात्रा खत्म करके वापस आ जाते हैं नवद्वीप में। और जब कुछ समय बीतता है तो जो सची माता देखती है कि मेरा जो पुत्र है वो सदैव अकेला अकेला है, उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। तो सची माता रोज सुबह स्नान करने के लिए जब जाते थे तो एक युवती को देखते थे, और वो युवती थी सनातन मिश्र की जो कन्या है। सनातन मिश्र नवद्वीप के राज पंडित थे, उनकी कन्या थी जिनका नाम था विष्णुप्रिया। अरे विष्णुप्रिया भगवान के विशेष शक्ति हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं, भू शक्ति, श्री शक्ति और लीला शक्ति। तो जो ये लीला शक्ति है भगवान की, वो भगवान की जितने सारे लीलाएं हैं और उनको प्रकट करना या उनके लिए अरेंज करने का कार्य करती हैं। और ये जो श्री भू शक्ति है वो जगत का प्राकट्य करना, उसका स्थिति और उसका विनाश, ये भू शक्ति के पास है। तो कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं और कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये जो विष्णुप्रिया देवी है ये भगवान की भू शक्ति है, और जो विशेष रूप से प्रकट हुई थी चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में सहायता करने के लिए। क्या सहायता करने के लिए? सारे जगत को दिखाने के लिए कि भगवान की विरह में किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, हाँ, सारे दुखों को सहते हुए। तो ऐसे विष्णुप्रिया देवी को सची माता रोज गंगा के किनारे देखती थी अर्ली मॉर्निंग, और वो देखती थी ये कन्या बहुत ही सुशील है, गुणवान है, हाँ, सुंदर है, ये मेरे निमाई के लिए योग्य है। तो जैसे ही सची माता उनको देखती थी तो ये विष्णुप्रिया सुबह सुबह गंगा में स्नान करके आती थी और सची माता के चरण छूती थी। तो ऐसे कुछ दिन बीते हैं तो सची माता ने निश्चय कर लिया कि मेरे पुत्र का विवाह होगा तो विष्णुप्रिया से ही होगा। तो फिर एक मैच मेकर होते हैं ना, काशीनाथ पंडित थे नवद्वीप में, उनका यही कार्य था। सची माता उनको बुलाती है और उनको कहती है जाओ सनातन मिश्र के घर और उनको कहो कि आपकी कन्या का हाथ मांग रहे हैं हम निमाई पंडित के लिए। तो कुछ समय में फिर उनके विवाह की योजना होती है। तो निमाई पंडित को इतने धराटे नहीं थे, हाँ, धन शादी के लिए सबसे ज्यादा धन लगता है, लोग कर्जा निकालते हैं और उत्सव साजरा कर उत्सव मनाते हैं, शादी मनाते हैं और बाद में वो ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो निमाई पंडित के पास इतना धन नहीं था, तो वहां इतने सारे डिवोटीज थे नवद्वीप में, उन सब ने कहा कि हम अलग अलग चीजें स्पॉन्सर करेंगे आपके विवाह के लिए। उसमें से एक ही डिवोटी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, समथिंग गुणराज खान या कुछ खान नाम था उनका, हाँ, बुद्धिमंत खान, हाँ, बुद्धिमंत खान ने कहा कि निमाई पंडित का सारा जो विवाह का स्पॉन्सरशिप है वो मैं करूंगा, सारा विवाह स्पॉन्सर करूंगा। हाँ, तो वो तैयार हो गया और उन्होंने कहा इनका विवाह ऐसे होगा, हाँ, कि किसी राजा के पुत्र का, राजकुमार का भी ऐसा विवाह नहीं हुआ होगा। तो चैतन्य भागवत में आप पढ़ेंगे तो 2 अध्याय केवल इसी के बारे में लिखा है, उनका विवाह कैसे हुआ, क्या क्या चीजें लाई गई और सम्मिलित हुई उस विवाह में। तो ऐसा उनका विवाह हो जाता है और चैतन्य महाप्रभु विवाह के तुरंत बाद कहते हैं मुझे गया जाना है, बल्कि विष्णुप्रिया देवी 8 साल छोटी थी उनसे। चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल में संन्यास लिया था तो उनसे विष्णुप्रिया बहुत छोटी थी, और अभी अभी विवाह हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा कुछ महीने के बाद कि मुझे गया यात्रा करनी है मेरे पिता का श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए। तो निमाई पंडित जाते हैं गया अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ, और विद्यार्थियों के साथ जब गया जाते हैं तो जाते जाते देखते हैं कि उनके जो संगी हैं वो ब्राह्मणों का मजाक उड़ा रहे हैं, ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो ब्राह्मण जैसे बोलते हैं वैसा ही बोलना चाहते हैं ये लोग। तो निमाई पंडित ने देखा कि ये सारे मेरे स्टूडेंट्स उचित कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको मुझे कुछ शिक्षा देनी पड़ेगी। तो निमाई पंडित ने एक बहाना बनाया कि मुझे बहुत बुखार हुआ है, और वास्तव में उनको बुखार आ गया, और पूछा कि इसके लिए दवाई क्या है। तो निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु ने कहा इसके लिए दवाई क्या है, ब्राह्मणों के चरणों को धोया जाए और उसके जल का पान किया जाए, वो मेरे लिए दवाई है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु सिखाना चाहते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। हाँ, ब्राह्मणों के प्रति उनका अनादर करना मीन्स अपने जीवन में अमंगल को आमंत्रित करना या अपने भक्ति का विनाश करना। तो ये सारे उनके स्टूडेंट जो थे विद्यार्थीगण जाते हैं और सारे ब्राह्मणों का चरण धोते और जल लेके आते हैं और चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंदित होकर उस जल का पान करते हैं और उनके विद्यार्थियों को भी कहते हैं आप भी क्या करो इस जल का पान करो। फिर वो गया जाते हैं और वो बहुत लंबा वर्णन कृष्णदास कविराज करते हैं कि किस प्रकार से एक पदी विष्णु का चरणों का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के आंखों में पहली बार आंसू आने लगे, आंसू पात हुआ। पहली बार वो जीवन में रो पड़े। किसको देखकर रो पड़े? भगवान के चरणों को। और कब? जब वो चरणों की महिमा भक्तगण वर्णन कर रहे थे। हाँ, इतना अधिक प्रेम उमड़ आया और जैसे ही वो रो ही रहे थे तो पीछे देखा तो ईश्वरपुरी है। ईश्वरपुरी से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। फिर दूसरे दिन अपने गुरु के लिए स्वयं कुकिंग करते हैं निमाय पंडित और उनसे विदा लेकर जब वापस आते हैं तो अभी उनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ गया था। पहले तो बहुत उदंड थे, बहुत घमंडित हैं, हाँ सीना तान के चलते थे, लेकिन अभी जैसे नवद्वीप में प्रवेश करने लगे तो बिल्कुल ही विनम्रता उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके बोली से झलक रही थी। और सबसे अधिक अधम पति पूरे नवद्वीप में वो अपने आप को मान रहे थे, अपने सारे विद्या आदि का त्याग करके। तो ऐसे निमाय पंडित जब नवद्वीप में वापस आए फिर से हाँ वो अपने बहुत सारे भक्तों को मिले, फिर कीर्तन आदि शुरू किया। एक साल तक शिवास आंगन में उन्होंने कीर्तन किया और ये जो उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया देवी ये हमेशा डरी रहती थी। अभी ये उनसे अधिक बात नहीं करते थे, हाँ उसके ऊपर चिल्लाते रहते थे। फिर एक बार विष्णुप्रिया को पता चला कि मेरे जो पति हैं वो सन्यास ग्रहण करने वाले हैं। तो एक रात्रि में दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप को छोड़कर जाने वाले थे, उसकी जो पहली रात्रि थी उस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु को विष्णुप्रिया मिलती हैं उनके कक्ष में और वहां उनके भोजन के उपरांत उनके चरणों की सेवा करने लगती हैं और चरण को अपने गोद में लेती हैं और लेते हुए जोर से रोदन करना शुरू करती हैं और प्रश्न पूछती हैं, हाँ मैंने सुना है, क्या वो सच है कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं? तो निमाय पंडित कहते मूर्ख, हाँ किसने कहा मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं? कैसे संभव है? तुम्हारी जैसी सुंदर भार्या हो, अभी अभी आपसे विवाह हुआ है, आपका पानी ग्रहण किया है और हाँ मेरी जो माता है अकेली माता है जो वृद्ध है, कैसे मैं त्याग के जा सकता हूं? और नवद्वीप में मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि अपने पारिवारिक जनों से भी कोई इतना प्रेम नहीं करता। श्रीवास पंडित की याद आई उनको, कहते श्रीवास पंडित अपना बेटा मर जाता है उसके लिए उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम किसके लिए है? मेरे लिए, कि मेरा कीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मतलब महाप्रभु ने कहा नवद्वीप के लोग इतना प्रेम करते मुझे अपने प्राणों से भी आदि, कैसे मैं छोड़ के जाऊंगा? हाँ तो कहते कि नहीं नहीं सो जाओ। हाँ तो थोड़ी देर विष्णुप्रिया देवी रुकती नहीं, सोती है थोड़ी देर और फिर उठती है मध्य रात्रि में, फिर उनका हाथ लेकर अपने सर में रखती है, अभी अभी बताओ हाँ कि आप संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। संन्यास ग्रहण करना, श्री संन्यास पति ग्रहण करता है तो श्री के लिए सबसे अधिक कष्टमय स्थिति है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं पति के बिना श्री का जीवन अत्यंत कष्टमय है। तो जब उन्होंने ये सोचा और विष्णुप्रिया देवी ये भी सोच रही थी कि संन्यास ग्रहण करेंगे तो उनके कमल के समान जो चरण है वो कैसे जाएंगे, हाँ रास्ते में कांटे हैं कंकड़ आदि हैं और इतनी सारी तपस्या आदि, तो उनको दुख हो रहा था। और सच विष्णुप्रिया ने कहा कि मेरा जीवन आपके लिए है। तो इन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु फिर कहते कि हाँ मैं संन्यास ग्रहण करने वाला। तो अभी उसकी आंखें बड़ी हो गई और जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा तुम भूल गए, तुम्हारा प्राकट्य केवल मेरे लीलाओं में सहायता प्रदान करने के लिए है। और मैं तो सारे जगत का कल्याण करने के लिए अवतरित हुआ हूं, और तुम क्या करो, मेरी सहायता करो और सारे जीवों को दुखों से मुक्त करने के लिए स्वयं कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो विष्णुप्रिया देवी वास्तव में अपने जीवन में कष्टों को स्वीकारती है दूसरों के कल्याण के लिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन निकल जाते हैं, संन्यास ग्रहण करते हैं केशव भारती के पास। और संन्यास ग्रहण करने के बाद दो बार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के पास आए थे पुरी जाने के बाद। एक बार संन्यास ग्रहण किया, फिर वो शांतिपुर आए, अद्वैताचार्य के घर रहे। तो महाप्रभु ने एक मैसेज भेजा, नित्यानंद प्रभु ने एक डिवोटी को कहा कि जाओ नवद्वीप के भक्तों को बोलो कि मैं सबसे मिलना चाहता हूं, आप सब शांतिपुर आ जाओ। चंद्रशेखर आचार्य उनके मैसेंजर थे, चंद्रशेखर आचार्य गए थे वो संदेश लेकर, जाकर नवद्वीप में जोर से बोलने लगे। उन्होंने कहा एक को छेड़कर सबको आमंत्रण है, कहां जाने का, कहां जाने का, शांतिपुर। क्योंकि सन्यासी को सन्यास ग्रहण करने के बाद अपने स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। हम मैं बीच में पढ़ रहा था गौर गोविंद महाराज के बारे में, तो उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और ओडिशा के थे, तो भुवनेश्वर में उन्होंने जब मंदिर बनाया एज अ गुरु थे प्रभुपाद के शिष्य गौर गोविंद महाराज, तो उनकी पत्नी मंदिर आना चाहती थी दर्शन के लिए। उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हो तब तक उसे नहीं आना है। तो सन्यास जो ग्रहण करता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपने स्त्री का, अपने पत्नी का पूर्व आश्रम में उसका मुंह चेहरा कभी ना देखे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु एक बार शांतिपुर में मिले सारे भक्तों को, और फिर दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु को जब जाना था वृंदावन बंगाल से होते हुए, चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे कुलिया ग्राम में, तो उस समय भी सारे भक्त महाप्रभु को मिलने के लिए गए, लेकिन पूरे नवद्वीप में एक ही व्यक्ति थे जो नहीं जा सकती थी, विष्णुप्रिया। ऐसा वर्णन आता है कि वो आंगन में जोर जोर से आक्रोश कर रहे थे गौरांग महाप्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कि आप सारे जगत को अपने असीम कृपा का वितरण कर रहे हो और केवल मुझे अकेले को आप छोड़ रहे हो। तो ऐसे कुछ दिनों के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु विष्णुप्रिया देवी के स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनके घर में दो ही थे, एक तो सची माता और विष्णुप्रिया। तो इन वैष्णव ने क्या किया, उनकी सेवा के लिए वंशी मदन ठाकुर एक डिवोटी थे उनको नियुक्त किया। वंशी मदन ठाकुर आंगन में सोया करते थे और उनकी देखभाल करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को एक ही साथ स्वप्न में आए, विष्णुप्रिया देवी को और दूसरे वंशी मदन ठाकुर को। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वप्न में आदेश दिया कि हे विष्णुप्रिया, जिस नीम वृक्ष के नीचे मेरी माता ने मुझे स्तनपान कराया है, उस नीम वृक्ष से क्या बनाओ, मेरा विग्रह बनाओ और उसकी तुम आराधना करो। तो सेम स्वप्न वंशी वदन ठाकुर जो बाहर थे उनको भी आया। तो फिर वंशी वदन ठाकुर ने जिस नीम ट्री के नीचे महाप्रभु का जन्म हुआ था उससे विग्रह बनाए। आज आप जाते हो नवद्वीप में तो वो विग्रह है जिनका नाम क्या है, धामेश्वर महाप्रभु। तो विष्णुप्रिया देवी उन विग्रह की आराधना करती थी नियमित रूप से, और भगवान के जो चरण पादुकाएं हैं उनकी आराधना करती थी और नियमित रूप से हरि नाम का उच्चारण करती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रेम विलास एक बायोग्राफी बुक है इनका, जिनके जिसमें लिखा है कि विष्णुप्रिया देवी ने ऐसा हरि नाम लिया कि जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इतना प्रगाढ़ वैराग्य उनके हृदय में था और चैतन्य महाप्रभु के लिए विरह की भावना थी। तो ऐसी विष्णुप्रिया देवी हरि नाम लेने के लिए बैठ जाते थे तो संध्या तक जप करते रहते थे और अपने साथ दो मिट्टी के पात्र रखते थे छोटे, एक में चावल होते थे कच्चे और दूसरा खाली रहता था। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि एक पूरा मंत्र उच्चारण करते थे तो एक चावल का दाना उठाकर दूसरे मिट्टी के पात्र में डालते थे, या कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि एक माला के उपरांत एक चावल का दाना लेते थे और उसमें डालते थे, तो ऐसा संध्या तक वो हरिनाम करते थे। और जितने चावल इकट्ठा हो जाए, आपको कहा जाए जितनी माला करो उतने चावल आपको प्रसाद मिलेगा, हाँ, तो उतने चावल लेती थी, उनको कुक करती थी और महाप्रभु को भोग लगाते थे और प्रसाद रूप में ग्रहण करती थी। तो विष्णु प्रिया देवी का ये व्रत था, जब तक वो थे तब तक उन्होंने इस प्रकार का आचरण किया और सारे गौड़िया वैष्णवों को उन्होंने ये शिक्षा प्रदान की कि चैतन्य महाप्रभु की विरह में असली सेवा क्या है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा करेंगे रघुनंदन ठाकुर की। रघुनंदन ठाकुर एक श्रीखंड एक गांव है बंगाल में, आप जाते हैं वहां कटवा के पास, जहां बहुत सारे डिवोटीज प्रकट हुए थे। तो उसमें दो प्रमुख भक्त थे जिनका नाम था नरहरि सरकार और एक थे मुकुंद सरकार। तो मुकुंद सरकार एक राज वैद्य थे और मुकुंद सरकार के पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर, छोटे से बालक थे। इतने छोटी अवस्था में भी उनको कहा जाता था एक गोपीनाथ के प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? हाँ, गोपीनाथ के प्रेमी। गोपीनाथ छोटे से विग्रह हैं, अभी भी हैं। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर के जो पिता है मुकुंद सरकार उनकी सेवा करते थे। तो मुकुंद सरकार एक दिन, उनको जाना था बाहर, जिस लीला को हमने कई बार सुना होगा, तो उनको बाहर जाना था। तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को कहा, रघुनंदन आप गोपीनाथ को आज भोग लगाओ। तो रघुनंदन अपनी माता से भोग का थाल लेके जाते और ऑफर करने के लिए बैठ जाते हैं और मंत्र उच्चारण तो नहीं कर पाते लेकिन देखते रहते हैं, बैठते साइड में, खा रहे ना आप ठीक से। तो वो गोपाल गोपीनाथ जो कृष्ण है इतने ही विग्रह छोटे से हैं, वो वैसे की वैसे खड़े हैं, थाली को भी नहीं देख रहे हैं। रघुनंदन ने कहा, मुझे छोटा सा बच्चा समझ रहे हो, मेरे पिता के हाथ से तो खाते हो और मैं भोग लगा रहा हूं तो खा नहीं रहे हो। तो देखा कि इसमें बिल्कुल निष्पाप है, कपटता से रहित है। हाँ, हम बड़े होने लगते हैं तो कपटता भरने लगती है, निष्पाप का ये जो गुण है रहित होने लगता है। तो जाता फिर गोपीनाथ को रहा नहीं गया, गोपीनाथ ने वो भोग खा लिया, खाकर खाली ताली रख दी उनके सामने और वो रघुनंदन लेके आ गए अपनी माँ को, माँ के पास, माँ ये रही थाली पूरी खाली हो गई है। उनके माँ को लगा कि ये बच्चा अपने मित्रों को बांट दिया इसने प्रसाद सारा। तो फिर ये रघुनंदन राज वैद्य थे, डॉक्टर थे, आए वापस, कहा अपने पत्नी को कि मुझे भूख लगी है, प्रसाद कहाँ है? देखा प्रसाद तो है नहीं। उन्होंने कहा, रघुनंदन ने कहा कि सारा खा लिया है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने लड्डू दिए, ताओ रघुनंदन लड्डू का भोग लगा। हाँ, तो ये विंडो से देख रहे थे कैसा भोग लगाते, देखते तो लड्डू गए उनके पास लेकर गोपीनाथ के पास और गोपीनाथ ने तो हाथ आगे बढ़ा दिया। हाँ, ब्रजवासियों का एक गुण है, वह घंटी और मंत्र काम नहीं करते, वहां कोई भोग लगाता नहीं है, वहां केवल सोचता ही है, इतनी इनर तीव्र डिजायर होती है भगवान को प्रसन्न करने की कि कृष्ण घंटी और मंत्र का विचार नहीं करते। तो साधकों के लिए है, हाँ, जिनके हृदय में अभी किसी भी प्रकार का भगवान के प्रति आसक्ति या प्रीति की भावना नहीं है। तो गोपिकाएं सोचती थी कृष्ण वहां आ जाते थे, हाँ, जबरदस्ती खा जाते थे उनकी चीजों को, बनाने से पहले शुरू कर देते थे। हाँ, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान को एक भोग लगाते हैं, उसका नाम क्या है? खाजा। क्या नाम है? वो रेसिपी भगवान को ही पता थी। हाँ, जगन्नाथपुरी के हर व्यंजन के पीछे एक एक कथा है। तो एक खाजा जो व्यंजन है, नाम ही कितना मधुर है। हाँ, तो जगन्नाथ को लगा कि ये रेसिपी मुझे बहुत भाती है लेकिन कौन बनाएगा इसे? तो एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसको भगवान ने स्वप्न आदेश दिया, कहा ये रहा, मैं आपको मैं रेसिपी बताता हूँ कैसे बनानी है, क्या क्या चीजें हैं। तो मुस्लिम व्यक्ति ने बनाई और लेके आ गया टोकरी भर के सिम्मदार के सामने। अभी वहां लिखा होता है हिंदूज आर अलाउड, और वो भी मुस्लिम, तो उसको तो भगा दिया, वहां से भागे रहे थे। तो उस समय भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया। भगवान जगन्नाथ जाते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, बल्कि ये नाम भगवान ने दिया है उसको, क्योंकि खाजा का मतलब क्या है, भगवान। इतने उतावले हो जाते हैं, बच्चे होते हैं ना उतावले, जब माँ कुकिंग करती है रहा नहीं जाता, वो चपाती पकती है नहीं कि तो बच्चे उठा लेते हैं। तो वैसे जगन्नाथ जी जब देखते हैं कि अरे खाजा व्यंजन वो तेल में क्या कहते फ्राई, तेल में डाल के उसको तलते हैं, सही शब्द है, तलते हैं, तो उसी समय जैसे वो छलनी किसे उठाते हैं, जो भी है स्पून से जब उठाते हैं तेल से, तो उठाते ही जगन्नाथ जी हाथ डालते हैं, मतलब उनसे रहा नहीं जाता और उसको तुरंत ग्रहण करते हैं। हाँ, इसलिए उसका नाम क्या है, खाजा, जैसे बाहर आता है कढ़ाई से तुरंत खा लेते हैं, इसलिए भगवान ने उसका नाम खाजा रखा। तो यहाँ जब इन्होंने ऑफरिंग किया लड्डू, तो गोपीनाथ ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया और खाना शुरू किया। तो मुकुंद कहते अरे मुझे जीवन बिता दिया भजन करते करते, एक भी दिन देखा नहीं कि भगवान ने खा लिया है, लेकिन ये बच्चा इसके हाथ से तो तुरंत ग्रहण किया। तो आज भी आप जाते हो श्रीखंड में तो गोपीनाथ के हाथ में क्या है, लड्डू है, आज भी है वो लड्डू। हाँ, मैं तो ट्राई करता हूँ, हर साल में एक बार जाता हूँ वो गोपीनाथ का दर्शन करने। तो ऐसे रघुनंदन इतना प्रेम था भगवान में कि एक दिन वो उस मंदिर के नजदीक एक सरोवर है, उसके किनारे कदंब वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर भगवान का गुणगान करते थे। हाँ, गौरांग स्तव उन्होंने लिखा उसके नीचे। तो वो इतनी सेवा करते थे रघुनंदन गोपीनाथ की, कि उनकी सेवा के कारण वो जो कदंब वृक्ष था उसके अंदर भी सेवा करने की भावना जागृत हो गई। कदंब वृक्ष ने कहा स्वप्न में, हे रघुनंदन, मैं रोज दो फूल दिया करूंगा, हाँ साल भर जब तक तुम जीवित हो तब तक दो फूल दूंगा, और दो फूल क्या किया करो तुम, गोपीनाथ को अर्पित करो। तो इस प्रकार से रघुनंदन का सेवा का प्रभाव था। और जब ये चैतन्य महाप्रभु को मिलने उनके पिता जब जगन्नाथपुरी गए और उनको प्रणाम किया, तो मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु उनके पिता को कहते हैं कि हे मुकुंद, मुझे बताओ रघुनंदन तुम्हारा पिता है या फिर तुम उसके पुत्र हो, या तुम पिता हो वो तुम्हारा पुत्र है, क्या एग्जैक्टली मुझे बताओ। चैतन्य महाप्रभु थोड़ा ट्रिकी प्रश्न पूछ रहे थे। तो मुकुंद उनके पिता जो थे उन्होंने कहा कि वास्तव में रघुनंदन हमारे पिता हैं। क्यों? क्योंकि रघुनंदन से हमने भक्ति सीखी है, इतना उनका प्रगाढ़ प्रेम और सेवा की भावना गोपीनाथ के लिए है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर जिन्होंने दीक्षा ली थी नरहरि सरकार से, उनके ही चाचा थे, महान भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के। हम गौर आरती में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, नरहरि आदि करी चामर डुला। हाँ, तो ये नरहरि और आदि, ये रघुनंदन और मुकुंद आदि, ये उनकी सेवा करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर जगन्नाथपुरी में हर रथ यात्रा में जाते थे, और उनका एक ग्रुप था जो चैतन्य महाप्रभु ने नियोजित किया था, कीर्तन ग्रुप, जगन्नाथ के सामने नृत्य आदि करते थे। और जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य नाम उच्चारण करते हुए अपने देह को त्यागा था, वहां श्रीखंड जो गांव है उनका। और एक आचार्य हैं श्रील पुंडरिक विद्यानिधि, पुंडरिक विद्यानिधि बड़े अमेजिंग वैष्णव आचार्य हैं। पुंडरिक विद्यानिधि श्रीपाद महादेवेंद्रपुरी के शिष्य थे, इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु उनका बहुत अधिक आदर किया करते थे। और ये पुंडरिक विद्यानिधि वृषभानु तया ख्याता कुरायो ब्रजमंडले। ये कृष्ण लीला में कौन है पुंडरिक विद्यानिधि? महाराज वृषभानु, राधा रानी के पिता। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में रहते थे और कभी इनको देखा नहीं था, मिले नहीं थे। तो एक दिन, और इनका निवास स्थान चट्टा ग्राम में है, बांग्लादेश में। लास्ट ईयर हम कुछ डिवोटीज गए थे वहां चट्टा ग्राम में, पुंडरिक विद्यानिकेतन निधि का जो बर्थ प्लेस है उसका भी इस्कॉन ने लिया है और पूरा बड़ा सा टेम्पल आदि बनाया है। तो ये जो स्थान है वहां पुंडरिक विद्यानिधि रहा करते थे और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में थे। चैतन्य महाप्रभु को जैसे विरह का भावना उनके हृदय में उठ जाते थे तो वो चिल्लाते थे, हे मेरे बाप, हाँ कहाँ हो तुम, हाँ कब मैं तुम्हें मिलूंगा। अभी नवद्वीप में ये बाप बाप कह के पुकारते रहते थे महाप्रभु, किसी को पता नहीं चलता था ये बाप कौन है इनका। एक तो बाप पता है कौन, जगन्नाथ मिश्र। तो बाद में पता चला कि उनके असली बाप कौन है, पुंडरिक विद्यानिधि, राधा रानी के पिता है। और पुंडरिक विद्यानिधि इतने महान वैष्णव थे कि बिना रोज गंगा का दर्शन करने जाते थे और कभी गंगा में स्नान नहीं करते थे। वो सोचते थे कि मेरे चरण कैसे मैं गंगा को लगाऊं, मेरे चरणों से गंगा का स्पर्श कैसे करूं। और दिन में जब जाते थे देखते थे लोग साबुन लगा रहे, कपड़े धो रहे, क्या क्या कर रहे गंगा में, दुखी हो जाते थे। इसलिए दिन में नहीं जाते थे, शाम की रात्रि में जाते थे गंगा का प्रणाम करने, आचमन करने या उनकी स्तुति करने। ऐसे विशेष डिवोटी थे पुंडरिक विद्यानिधि। तो ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि की और भी लीलाएं हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी की एक लीला बताता हूँ। जब दिसंबर में वोड़न षष्ठी एक फेस्टिवल आता है वैष्णव कैलेंडर में, जिसमें उस दिन से भगवान ठंड के कपड़े पहनना शुरू करते। तो ये और इनके मित्र थे गदाधर पंडित, ये दोनों गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने। दर्शन करने गए तो वहां देखा कि आज वोड़न षष्ठी है और भगवान को नए विंटर के क्लोथ्स पहनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या लगा हुआ है, माड़, जो स्टार्च होता है ना, माड़ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कैसे ये पंडाज हैं, इनको कुछ बुद्धि है कि नहीं, हाँ धोके पहनाना चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध होते हैं। ऐसा थोड़ा बोल के सोच के वापस आ गए। हाँ भगवान इतना गुस्सा हो जाते हैं यदि कोई उनके भक्तों के बारे में कुछ अनाप शनाप बोलता है, हाँ अपने बुद्धि भौतिक बुद्धि के आधार पर। तो यहाँ पुंडरिक विद्यानिधि आए कुछ भी बोल के सो गए, और सो गए तो ये तीनों जो आल्टर में बैठते हैं कौन कौन है, हाँ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ, ये तीनों का जो गैंग है ये निकले बाहर। निकले तो संध्या में ये सो रहे थे, पुंडरिक विद्यानिधि उनके कक्ष में पहुंच गए। पहुंचते ही हाँ जगन्नाथ जी बैठ गए छाती पर और थप्पड़ लगाना शुरू कर दिए, इतना मारा। बलराम कहते तुम अभी उतर, मुझे मारने दो उनको अभी। चैतन्य भागवत में लीला आती है, चैतन्य भागवत के अंत्य खंड में जब एंड होता है बुक का, तो ये वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। तो जब बलराम ने भी उनकी धुलाई की, पुंडरिक विद्यानिधि सुबह उठे और अपने मित्र के पास गए और उठे तो पहले देखा साइज साइज चेंज हो गया है मेरे फेस का, तो देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर उन्होंने गदाधर पंडित को बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। तो ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि बहुत ऑपुलेंस में रहा करते थे, उनके वस्त्र, उनका घर और साज सामान। भारी रूप से कोई कहेगा कि ये तो विषय ही है, और पान चबाते थे। ये गदाधर पंडित जब गए देखने मुकुंद के साथ, कहने लगे अरे मुझे तो आप कह रहे थे महान वैष्णव से मिलाने लाया हो, ये कैसा महान वैष्णव है, वस्त्र तो उसके इतने ऐश्वर्यवान हैं। तो फिर लेकिन मुकुंद ने जब श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का गान किया हो बकियम का, तो पुंडरिक विद्यानिधि शून्य मात्र से कृष्ण की उस लीला को थोड़ा सा शून्य मात्र से दिव्य भावों के विकार उनके हृदय में जग उठे, और जिसके कारण गदाधर पंडित बाद में समझ पाए कि भारी रूप से मैं इनको समझ रहा था हाँ कि ये तो विषय के समान है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, महान हाँ प्रेमी भक्त है, ऐसे पुंडरिक विद्यानिधि और एक आचार्य रह गए हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में इतना अधिक नहीं है, लेकिन उन्होंने एक महान भक्त दिए जिनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। और वास्तव में इनकी कमेंट्री जो गीता के श्लोक में थी हाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि हाँ, जिस कमेंट्री को पढ़ के श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें फिक्स हुआ हूँ कि आध्यात्मिक गुरु की सेवा ही क्या है, आध्यात्मिक जीवन का सार है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारे ग्रंथ दिए हैं और प्रभुपाद ने गीता और श्रीमद् भागवतम के जो तात्पर्य दिए हैं वो अधिकतर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो टीकाएं हैं उन पर आधारित है। तो इस प्रकार से इन आचार्यों का, और एक रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी छह गोस्वामी में से एक हैं जिनका प्राकट्य हुआ था प्रियव्रत महाराज के जो सात पुत्र जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था बंगाल में, वो उस स्थान में तपस्या की जिस स्थान का नाम सप्तग्राम पड़ा, वहाँ इनका प्राकट्य हुआ था रघुनाथ दास गोस्वामी का। और इनको बचपन से ही हरिदास ठाकुर का संग लाभ हुआ था, जिसके कारण कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हरिदास ठाकुर की थोड़ी सी सेवा की थी उन्होंने, जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु की कृपा और सेवा करने का उन्हें मौका मिला। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अद्वैत आचार्य के घर में आए तो ये छोटे ही थे, उस समय वहां आकर निवास किया उन्होंने शांतिपुर में, और अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का चरणों का जल और रोज प्रतिदिन उनको चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट दिया करते थे। फिर दूसरी बार वो मिले जब चैतन्य महाप्रभु वहां जा रहे थे राम के लिए जाकर रूप सनातन को दीक्षा प्रदान आदि की, और जब वापस आए तो शांतिपुर में रुके थे, उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर से कृपा प्राप्त की, सेकंड उनकी भेंट थी, और जिसमें चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सारा जंजाल छोड़ देना चाहिए, उनका विवाह हो गया था, मैं अभी आपके साथ आना चाहता हूं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, मैं जब वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन यात्रा खत्म करके मैं जगन्नाथपुरी आऊंगा, तब तुम कुछ बहाना बना के आ जाना हाँ छोड़ के आ जाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुम्हें बुद्धि देंगे हाँ उस समय क्या करना है तुम्हें छोड़ने के लिए हाँ। तो वास्तव में वैसे ही हुआ हाँ। रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन उनके गुरु यदुनंदन आचार्य ने कहा कि जाओ कि पुजारी को बुलाओ, मंगल आरती में लेट हो रहा है वो पूजा करने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा पुजारी को बुलाने जाता हूँ। वो गए, बुलाने नहीं सीधा जगन्नाथपुरी दौड़े, 18 दिन जहां लगते वो 12 दिन में पहुंचे, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया उन्होंने, और वहां पहुंचे तो वहां जाकर सीधा गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु के चरणों में स्वरूप दामोदर कहते गोविंद कहता है कि देखो रघुनाथ आए हैं। अच्छा रघुनाथ गोवर्धन मजुमदार के जो पुत्र है हाँ महाप्रभु के, अच्छा हुआ तुम्हें विषय के जो गड्ढा था उसमें से कृष्ण ने निकाला। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते मुझे पता नहीं कृष्ण ने निकाला या किसी ने, मुझे पता है कि आपने निकाला है मुझे हाँ। फिर महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर के साथ रखते हैं और स्वरूप दामोदर के साथ वो सेवा आदि करते हैं, और जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं तो वृंदावन में आते हैं, रूप सनातन के साथ निवास करते हुए राधा कुंड के तट पर निवास करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और वहां रहकर रोज 3 घंटा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते थे, और जिसमें कृष्णदास कविराज आगे बैठकर श्रवण करते थे और नोट्स बनाते थे, और जिनके कारण ही कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत प्रदान किया। तो ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी हाँ 6 गोस्वामियों से एक है। तो हमने प्रयास किया इन आचार्यों का हाँ थोड़ा थोड़ा गुणगान करने का। श्रील प्रभुपाद के हिताय गौर प्रेमानंदे।